अच्छा दादी जी, आपकी तरफ हम सुनना चाहते हैं कि आजकल जो हवा फैल रही है, सभी को आइसोलेशन कहते हैं, दूरी रखनी है, लोग मूंझ जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये ऐसा मौका है जो हम अंतर्मुखता बनने का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन लोगों का जो ये बाहर मुखता की आदत है, वो उसको छोड़े कैसे, अंतर्मुखी बनने का परिभाषा क्या है और उसके लिए लव कैसे पैदा करें, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं।
अंतर्मुखी बना जब हम आए हैं, जैसे हम सुबह सुबह को बाबा का सुनते हैं मुरली, तो उस मुरली को हम अपने अंदर मनन करते रहें। पहले तो याद करें, आज बाबा ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये। तो जब हम उसमें मग्न रहते हैं ना, माना उन्हीं में, तो और बातों के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। भले हम और घर का काम करते रहेंगे, लेकिन उसमें वो ध्यान नहीं जाएगा कि करे या न करे या कोई बड़े से बात करे। उसमें हम अपनी मस्ती में होंगे, माना जो हम कर रहे हैं, जो हमने सुबह को सुना है अमृत वेले, उसको हम फिर मनन करते रहेंगे। तो उस मनन से क्या हो जाता है कि अपने अंदर जैसे बाबा के महावाक्यों का महत्व जागृत होता है, जिस महत्व से फिर वो हम और भी एकांत में रहते हैं। जैसे देखो, मैं थी तो मैं जास्ती एकांत में रहती थी और ऐसे कोई मुझे देखे ही नहीं। जास्ती करके कोई भी ऐसा बड़ा होगा, वृक्ष वगैरह ऐसा, उसके पीछे जाके बैठेंगे तो आने जाने वाले मुझे देखेंगे नहीं। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा मन उसमें लगा हुआ है कि बाबा ने जो हमें समझाया है, मुझे उसको अच्छी रीत से अंदर में मनन करना है। तो वो लगन होने के कारण बाहर की कितनी भी बाहर मुक्ता हमारे सामने होती रहे, लेकिन हमारा उसमें ध्यान नहीं जाएगा।
तो सहज रूप से हम ये कह सकते हैं दादी कि अंतर्मुखी बनना माना अपने माइंड में श्रेष्ठ संकल्प का ध्यान होना चाहिए, और फिर एकांत, एकांत की परिभाषा साइलेंस,
एकांत और वो बातें की हो जाती है ना।
अच्छा,
एकांत माना एक के अंत में जाना।
अच्छा,
तो एक का अंत एक कौन, एक शिव बाबा ही है, उसके अंत में जाना कि उसके द्वारा हमें क्या शिक्षाएं मिली है, उन शिक्षाओं को हम अपने अंदर कैसे धारण करते जाएं, जो हम भी ऐसे खुश रहे कि जैसे कि एकांत हमको, जैसे अभी समझो एकांत में बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या, ऐसे क्यों बैठे। लेकिन हम लोगों को, हम जानबूझ के एकांत पसंद करते थे। जैसे ही बाबा सिंसुबु के अमृत वेले की मूली सुन के आएंगे, उसके बाद काम कर थोड़ा करके फिर अपने एकांत में कहीं जा करके वहाँ जो बड़ा झाड़ वगैरह होगा उसके बाजू में बैठ जाएंगे।
माना आपने खास टाइम भी निकाला है खुद को एकांत में बिठाने के लिए, ताकि आप एक के अंत में गहराई में जाओ।
माना वो उसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमारा समझो झुंड है, जो हमने आज सुबह को क्लास सुना उसको मनन करने का टाइम, अगर हम बातचीत में लग गए तो मनन नहीं कर सकेंगे। तो हमारा क्या था, हमारा पर्सनल, वो भले इसमें लिखो या नहीं, परंतु हमारा क्या था कि हम किससे शुरू में तो बात ही नहीं करती थी, बस अपना उठे अपनी जगह से और जो कुछ करना है काम का, समझो खिलाना है, ये करना है, वो करना, वो करके जब फ्री होंगी ना तो जा करके कोई अपना बगीचा तो होता ही ना, तो उसमें कोई झाड़ के नीचे जाके बैठ रहे। और फिर तो क्या किया मैंने, बाबा का कमरा था ना, उसके पीछे अच्छा बड़ा दालान था ऊपर में, तो हम जो बाबा चक्कर लगाने जाते थे तो हम उधर जाके बैठ जाते थे। तो बाबा को तो पता ही नहीं बाहर कोई बैठा है, तो बाबा ऐसे ही आते बाबा भी बाहर जाते थे तो घंटा डेढ़ तो लगा देते थे ना, तो मैं हम फिर अंदर ही उधर बैठ के कभी लिखते रहते थे और कभी एकांत में बैठते। तो उससे क्या हुआ कि हमको बहुत फायदा होने लगा, क्योंकि हमारी मनन शक्ति एक बार लग गई ना उसमें जो बाबा ने बोला है। क्योंकि बाबा की मैं मुरली लिखती थी, मुझे किसने बोला नहीं मुरली लिखो, मैं अपने आप लिखती थी। और लिखते लिखते बाबा तो फिर भी मेरे लिखने से तो फास्ट ही बोलेंगे ना, तो फिर हमने क्या किया कि हम समझती थी मैं ऐसा कुछ बनाऊं जो मैं बाबा बोलता जाए और मैं मेरा वो लिखा हुआ हूँ। समझो जैसे है ना, अंत के आगे तो मुझे पूरा याद रहता था, वो पीछे याद आ जाएगा। तो उसमें क्या हो जाता था मेरा, और कहाँ भी ध्यान नहीं जाता था, भले कोई कहेगा बाबा इधर बैठा है बाबा उधर बैठा है, तो मैं उन बातों को परवाह नहीं करती।
माना दादी, लिखने लिखने से भी फायदा होता है ना, जब भी हम मंथन करते हैं बाबा की बातें तो उसका
लिखें। हाँ। जो हमने मंथन किया या जो बाबा ने भी सुनाया, तो उस समय लिखने में तो कहीं हमारा मिस होता है ना, लेकिन वो फिर अगर हम याद करके लिखते हैं तो फिर धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है।
दादी अभी क्या है,
बुद्धि फ्रेश होती है ना छोटेपन में।
हाँ, वो आपने छोटेपन से आदत डाली है। अभी आप समझो ड्रामा अनुसार, अभी लोग तो बहुत पहले कंप्लेन करते थे हमारे पास टाइम नहीं है योग का, टाइम नहीं है मंथन का।
अभी तो है,
अभी तो वो कंप्लेंट खत्म हो गई, अभी तो सभी के पास टाइम है। लेकिन ये जो बचपन से बाहर मुक्ता की आदत है ना, वो जल्दी छूटती नहीं है। तो जैसे लोग कहते हैं कि बेचैनी महसूस होती है उनको, बेचैनी महसूस होती है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो बेचैनी को खत्म करने के लिए और व्यर्थ को खत्म करने के लिए विधि क्या है?
सबसे सहज विधि, चलो बाबा की मुरली सुन ली ना, अपना काम खाने खिलाने, हमारा पहले खिलाने का काम था, तो खिलाने का काम पूरा करके फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं है ना, फिर जा करके हम बैठते थे आज बाबा ने क्या बोला है, वो फिर हम खुद बैठ के लिखते थे। और लिखने में भी लिखते लिखते फिर दूसरे मनन आगे थोड़ा, तो फिर समझो जो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में ये बाबा बहुत करके शुरू में ये बोलते थे, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में बाबा फिर हमें बताते थे। तो इस सारी पॉइंट्स का एक इनिशियल,
अच्छा शॉर्ट हैंड, अच्छा
हाँ, वो मना हम शॉर्ट हैंड बहन न किससे पूछती थी न किससे सीखी।
हाँ, आप सिर्फ अपनी अपनी तरह से शॉर्ट हैंड बना
तो वो करती, मुझे देख के पे ये ईशु बहन और दूसरा कौन था, दो जनी थी वो करती थी, फिर वो थोड़ा आगे आई, फिर हम बाबा ने बाहर भेजा ना, तो वहाँ भी अकेले अकेले गए शुरू में।
दादी आपने जब इतना मंथन किया और आपने बोला कि आपको फायदा बहुत मिला इससे, फायदा का थोड़ा एक्सपेंड करो, कौन सी बात में आपको फायदा मिला?
फायदा माना कि इंटरेस्ट बढ़ा ना, माना ये नॉलेज नहीं है वो, मुझे इंटरेस्ट बढ़ा ना। और जैसे जैसे बाबा बताते गए बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में, तो ये नई बात है ना, हमने सुनी नहीं थी ना पहले इतना। क्योंकि बाबा आज की मुरली कल की मुरली माना बहुत करके ये बोलते थे शुरू में, तो उसमें और उसको फिर मैं शार्ट में लिखूं।
हाँ।
और शार्ट को फिर जब मैं बैठ के लिखती थी तो जब बाबा को पता चला, बाबा के कमरे के दालान में बैठ कमरे के संदु गैलरी में, तो बाबा ने बुलाया मुझे, बच्ची तुम क्या लिखती हो? मैंने कहा जो बाबा आपने आज मुरली चलाई मैं वो लिखती लेके आऊ। तो हम तो लेके गई, क्यों मुझे तो खातरी थी, मैंने लिखा अच्छा ही लिखा।
नहीं, ये अच्छी विधि है दादी कि आपने बताई है, जो सभी फायदा उठा सकते इसका, कि मुरली के बाद थोड़ा समय निकाल के ऐसे बातें निकालो मुरली से और उसके ऊपर लिखो, टॉपिक लेकर के लिखो, ये कहने का भाव ये है। और ऐसे आप करेंगे तो वो बाहर मुक्ता का संस्कार भी ऐसे खत्म हो जाएगा ना।
और मुरली में मुरली का रस सबको बैठे,
मुरली का रस लोग
जैसे काफी वैल्यू बाबा के।
हाँ, अरे ये काफी लोगों का प्रश्न होता है।
इसलिए बाबा जब जाते थे घूमने तो मैं नहीं दिखाई पड़ती थी तो खास बुलाते थे, बाबा खड़ा रह जाता। कभी बाय चांस मुझे पता नहीं होता तो फिर बुलाते थे, क्योंकि बाबा को पता चल गया ना ये लिखती। और लिखती भी कहाँ थी, बाबा के कमरे के गैलरी में।
अच्छा दादी, कई विदेशियों को सभी का कंप्लेंट ये है, और जब भी आप यूथ के साथ बैठते हैं तभी भी ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि वेस्ट थॉट्स को
कैसे बदल,
बंद करने की एक इमीडिएट विधि क्या है, तुरंत विधि।
पर वेस्ट थॉट्स जागे ही क्यों? जब हम शुरू से इधर आते हैं तो हमारे अंदर वेस्ट थॉट कहाँ से आया, और आए भी बचपन में, तो वेस्ट थॉट हम ही बनाते हैं। इसको देखा, उसको देखा, ये देखा, तो बातचीत करते हुए हम ही बना लेते हैं अपने
पर चिंतन से।
तो हमारा शुरू से, किससे भी मैं बात नहीं करती थी।
दादी ये मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी ज्यादातर वेस्ट होता है ना तो प्यार, बाबा से प्यार लेने में भी कमी होती है
ना। फिर वो बाबा का
वेस्ट प्यार को डाइल्यूट कर लेता है। तो ये जो बाबा कहता है लवलीन स्थिति, उसके ऊपर थोड़ा बताइए कि लवलीन स्थिति बनानी है तो क्या किया जाए।
तो इसमें अभी तो बड़ा सहज है ना, क्योंकि अभी हमारे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, तो ये हमको अपने आप से काम लेना है। आज बाबा ने जो बताया, कौन सी उसमें मुख्य बात थी, अपने से पूछना है,
अपनी बुद्धि का काम लेना है।
हाँ, अपने से पूछना, समझो मैं दूसरे से पूछू ना, या समझो तुम मेरे से पूछती है तो मैं उस समय मूंझती हूँ ना। पर अगर समझो मेरा एक तो हमारा ध्यान रहता बाबा में, तो जो बाबा, और थोड़े कोई लिखता था, पहले तो सिर्फ मैं ही लिखती थी, फिर दूसरे थोड़ा थोड़ा लिखने लगे, फिर ये चंद्रा स्वाई वो लिखने लगा, फिर ईशुदा जी को शायद बाबा ने बोला लिखने के लिए, क्योंकि वो बाबा का वो
ऑफिस संभालती थी ना। तो दादी लवलीन होना माना क्या?
लवलीन होना माना उन्हीं बातों का अंदर में रमन करते रहना।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग ज्ञान को अलग कर देते हैं, बाबा को अलग कर देते हैं, कहते हैं बस मुझे इतना ज्यादा सोचना नहीं है, बस एक शिव बाबा को याद करना है, तो उसमें से तो एक्यूरेट प्यार पैदा नहीं होता।
तो याद रहेंगे कैसे?
वही
जब कुछ बाबा से मिलेगा तब तो याद रहेंगे ना।
तो जब हम ज्ञान मंथन करेंगे तभी कुछ मिलेगा, फिर वो याद स्थाई रहता है नहीं?
तो उससे बाबा का कदर रहेगा ना हमारे पास। ऐसी ऐसी बात सुनाई उसमें, कभी कोई अच्छी बात कभी की, तो अपना ध्यान जाता है ना, तो वो समझो नॉलेज के आधार पर हमारा बाबा से प्यार जुड़ता है।
अच्छा दादी, दूसरा प्रश्न ये है कि भय, जो अभी के संसार का वातावरण में, वो अभी लोग अकेले हो गए हैं, वो नहीं हो सकता है, तो भय ज्यादा बढ़ रहा है कि आगे के लिए क्या होगा, या अंदर में भी जो पुरानी बातें खत्म नहीं हुई है, कर्म भोग भी खत्म नहीं हुआ, उसका भी भय पैदा होता है। तो भय को खत्म करने के लिए क्या विधि है?
विधि तो यही है ना, जो बाबा की मुरली हमने सुनी है, या चलो नहीं भी सुनी है पर लिखत है ना हमारे पास, उसको हम रिवाइज करें। अच्छा। मना उसी पर उसको ध्यान से पढ़े, तो बाबा ने ये क्या कहा,
मना बुद्धि को पूरी रीति से बाप के ज्ञान में फंसाना है।
हाँ।
क्योंकि वो फसाता नहीं है तो फिर पुराने फीलिंग्स आते हैं ना, इमोशंस आते हैं ना दीदी, वो भय का इमोशन पैदा होता है, फिर मन भटकता है इधर उधर, ऐसे भी होता है।
फिर कोई बात नहीं करेगा तो हम देखो कोई मेरे से बात भी नहीं करता है, या मैं किससे जाके बात करूं, तो इसमें सवाल नहीं आता है किससे बात करूं या कोई नहीं करता है। मुझे तो बाबा ने जो कहा है उसको अच्छी रीत से अपने को याद रखना है, मेरा लक्ष्य ये रहता है। तो जब सब काम काम से, और हम लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी भी तो मिली, शुरू में हमको खाना खिलाने की ड्यूटी थी, तो जब हम उससे फ्री होते थे ना तब जा करके एकांत में बैठ करके लिखते। और वो भी मज़े की बात है, जो आपने तो देखा होगा हमारा पांडव भवन, तो क्या कहे पांडव भवन ही समझो कहे, जो बाबा तो ऊपर मारे पे रहते थे, तो जो सीढ़ी चढ़ते हैं फिर उसके पीछे खिड़कियाँ थी माना ऊपर वाले, और उसके पीछे थोड़ा ऐसे पहाड़ी के माफिक, तो हम उधर जाके बैठ जाते थे। बाबा के पीछे भी कोई कोई आएगा नहीं, बाबा के घर के पीछे कोई आएगा नहीं, तो उधर बैठ करके जितन बाबा ने बोला है देखो मुझे क्या याद है, और बाकी भी बड़ी बड़ी लाइन का हम अपना शॉर्ट हैंड बना लेती थी, तो वो उसमें इसमें मुझे इंटरेस्ट रहता था।
तो दादी आप लोगों का तो शुरू से यही अभ्यास है, हाँ। अंतर्मुखी रहना, एकांत में रहना, तो अभी ये सभी बात तो कोई आपके लिए तो प्रॉब्लम, कोई तो मानता नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बात में इश्यू नहीं,
बड़ी
है,
नहीं है,
बड़ी नहीं,
मुश्किल
है,
नहीं है,
मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जैसे
शुरू से इसमें ही है।
हाँ वो ही, अभी क्या हुआ है दादी के सेवा का फैलावट बहुत हुआ है,
तो सेवा हम भी करते थे ना, ये बाहर निकलते थे तो सेवा में ही भेजा ना बाबा ने, और अचानक एक शुरू में पहले पहले जब मैं गई हूँ, मैं और दादी कुमार का, बाबा ने तो उसको भी तैयार किया था, कौन भाई,
आनंद किशोर,
आनंद किशोर दादा, फिर लास्ट में बाबा ने उसको रोक दिया, कहा बाबा ने कहा उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया ना, तुम लोग जाके पीछे निमंत्रण देना फिर इसको भेजेंगे, तो हमारी समझो अपने पर जवाबदारी हो गई ना सुनाने की, जो कभी बड़ी सभा में भाषण वगैरह किया नहीं है, परंतु डरते नहीं थे, क्योंकि शुरू में तो बाबा का हम जब ज्ञान सुनते थे ना तो नशा बहुत रहता था।
हाँ दादी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब
इससे हम डरते नहीं,
हाँ डर और नशा, माना लोग काफी भी ये प्रश्न पूछते हैं, हम खुशी इतना महसूस नहीं करते हैं, चलो खुशी के लिए वो ढूंढते हैं, लेकिन नशा ऊंचा रखना माना
खुशी,
खुशी और अपना
अपने में फेथ,
अपने में फेथ,
तो वो फेथ हमको और भी अंदर से नई नई बात जागृत करता है, माना उसमें इंटरेस्ट रहता है ना, तो जब हम उसको पढ़ेंगे या जब जो भी बाबा ने सुना, मैं तो एकांत में जा करके लिखती थी, तो फिर
तो दादी आपको कभी कमजोर संकल्प आए नहीं है आपके प्रति?
नहीं
नहीं आए हैं,
क्या आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि शुरू से हम समझो अपन को इतना समर्थी नहीं थी, और शुरू से ही बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया,
तो आप कभी निराश नहीं हुए हैं?
नहीं, मना ऐसी निराशा ही मेरे में नहीं है,
निराशा का संस्कार नहीं, कमाल है।
बाकी और क्योंकि मैं और भी जस्ती बीच में जाने नहीं चाहती, अकेला ही पसंद करती थी, क्योंकि लिखने के लिए जब एकांत है तो उसमें अच्छी रीत से एक ही बात में मन लगा के करेंगे, तो उसका विस्तार क्या है वो भी अपने आप से निकलता है।
तो दादी अभी
जिससे हमको खुशी होती थी, और फिर उसमें ऐसे हो गया कि बाबा को पक्का हो गया ना, क्योंकि फिर मैं लिखती थी, वो भी बाबा को, जब मैं बाबा के कमरे के पीछे लिखती थी ना, तो अचानक एक दिन बाबा आ गया, क्या कर रही हो बच्चे, मैंने कहा बाबा आज की मूली अच्छा जो लिखो ना मेरे पास भेजना, उसके बाद समझो मेरी रेगुलर मूली लिखना हो। फिर तो बाबा बोलता रहे उसी समय लिखना शुरू कर, नहीं तो पहले नहीं लिखती।
माना आपकी मंथन करने की शक्ति काफी बढ़ी उससे, कहने का तो ये है कि मतलब
हमारे पास क्योंकि शुरू से ही आए है ना, और बचपन में ही आए ना, तो हाँ, लोग भी तो बचपन में ही आए ना, तो बचपन में आए और शुरू से उसमें लग गए और शुरू से समझो बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया।
और दादी आपके बचपना और हमारे बचपने में रात दिन का फर्क है ना, हम तो जल्दी से जल्दी सेवा के फील्ड पे आ गए। चलो थोड़ा टाइम तो मिला एकांत में रहने का कुछ फाउंडेशन, लेकिन ज्यादातर टाइम तो सेवा, क्योंकि सेवा का एक्सपेंशन बहुत हो रहा था। तो दादी लास्ट में आप अभी के समय अनुसार सारा विश्व आपके सामने रखो, पूरा ब्राह्मण परिवार आप अपने आगे रखो, कौन सा अभी के समय अनुसार आप कौन सा मैसेज देंगे पूरा ब्राह्मण परिवार को, चाहे देश वाले या विदेश वाले को, मुख्य मैसेज आप क्या देंगे?
मैसेज तो यही कहूं कि अब हमें जो बाप से नॉलेज मिली है, उस नॉलेज को हम अपने अंदर मनन करते रहें। और मनन करने कौन सी बात, कि ये जो बाबा कहते हैं कि क्या बोलूं मैं, माना मैं कौन हूं, यही अपने को खुद ही खुद को पक्का कराए। तो मुझे कभी ये भूले नहीं, समझो नाम तो शरीर का है ना, तो मैं कौन हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुरू में हम ये बात अपन को बहुत पक्की कराते थे, जिस कारण किससे बोलना चालना जैसी जैसी है, और बाकी भी मेरा काम ये हो गया। जो बाबा समझो बिजी हो गया इधर उधर, तो मैं फिर जा करके बाबा के कमरे के पीछे, गैलरी बड़ी थी ना, आप लोगों ने तो वो नहीं देखा था बड़ी थी गैलरी, तो हम उस कोने में जाके बैठते थे।
दादी कभी किसी का प्रश्न होता है कि खुद की कमजोरी को महसूस कैसे किया जाए, क्योंकि काफी सभी को आपकी कमजोरी दिखाई देती है लेकिन कभी कभी खुद को नहीं दिखाई देती है, तो खुद की कमजोरी को कैसे महसूस किया जाए सूक्ष्म रूप में?
खुद ही खुद खुद के कमजोरी को खुद को ही महसूस करना।
कैसे
कैसे
माना, विधि है क्या?
माना नहीं, विधि नहीं, माना अपने को समझो कोई कुछ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, या मुझे ये तो देखो क्या सदा है सही बोलती, पर फिर जब हम कहते हैं ना अपने से बात करनी है या अपने को देखना है, तो जब हम एकांत में बैठेंगी ना, या समझो बाबा का लिखने बैठती या कुछ भी, तो उस समय इस बात पर हम ध्यान देंगे। तो मैं दूसरे को ऐसा क्यों समझ, मैं उस पर क्यों चिढ़ जाती, उसकी काम हो जाने, उसका कर्म बंधन हो जाने, वो जो करेंगी वो करेंगी, मैं करके मैं अपना चिंतन क्यों खराब करती। तो बीच बीच में समझो ये बात है, अभी पूछी है तो उसी रीति से कभी हम ऐसे भी करते थे, तो फिर उस बात को हम एक अपने को पक्का रखते थे, कोई कुछ भी कहते रहे चलो उसको मेरा नहीं अच्छा लगता है, ते मैं क्यों ख्याल करूं, मैं तो बाबा की मुरली को याद है, बाबा तो मुझे प्यार करता है ना, फिर मैं उसका क्यों देखूं, माना एक रीति से।
तो फिर सीखने की भावना क्या होती है, हम औरों से नहीं सीखते हैं क्या?
सीखते हैं ना,
सीखते हैं,
तो जो अच्छी बात है वो सीखे,
वो सीखे ना, हाँ सही बात है। सही बात है।
तो बाबा ने क्या फिर समझो, जो बाबा ने बताया है वो कोई बात नहीं समझ में आई, तो उस बात को लेकर के हम समझो कोई बड़ी बहन है या क्या उनसे पूछेंगे, बाकी नहीं तो नहीं। और ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि शुरू से लग गई ना
वो
बाबा की नॉलेज में।
दादी आप बाबा के समय शुरू शुरू में ऐसा कोई था कि जब भी आप कुछ मिस्टेक करते थे तो अपने आप को टाइट कर लेते थे, माना समझो आपने कई अशुभ बोल बोला तो
वो
फिर खाना नहीं खाना है, ऐसा कुछ होता था सिस्टम उन दिनों
ऐसे
में?
ऐसे मुझे ध्यान नहीं है, वैसे ही हमारा खाना तो कम शुरू से,
क्योंकि खुद को थोड़ा टाइट रखना बहुत जरूरी है,
अगर हम जास्ती अपन को लूज रखते हैं ना तो वो भी अच्छा नहीं है,
वो भी खाने पीने में बहुत, काफी लोग दादी जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है,
हम तो खाने पीने में शुरू से नहीं थे
और क्या है इस पे कंट्रोल नहीं होता है ना दादी, तो बोलने में भी कंट्रोल नहीं होता है, बोलने में कंट्रोल नहीं होता है तो सोच में भी कंट्रोल नहीं होता है,
फिर तो फंसा,
वही फंसा,
फिर उस पर अटेंशन नहीं दिया ना
वही,
तो फिर तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल, जब जास्ती में चला जाता
जास्ती, और फिर ये जब आदत बन जाती है ना दादी ऐसे, तो मंथन का तो फिर नाम निशान भूल जाओ,
फिर मंथन वो ही चलता है ना, इसको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे।
थैंक यू दादी,
थैंक यू,
बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, सभी विदेशी बहुत खुश हो जाएंगे कि आपने इतना टाइम दिया,
ये तो हमको रिवाइज कराया तो अच्छा, नहीं तो हम अभी थोड़ी ये रिवाइज कर
नहीं, बहुत अच्छा है दादी, थैंक यू।